एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये हमारे शरीर के एक ऐसे हिस्से पर है जो बहुत जरूरी है, पर शायद हम उस पर उतना सोचते नहीं। खून।
हाँ, और किताब का नाम भी बड़ा अनोखा है, 9 पॉइंट्स। इसे लिखा है रोज जॉर्ज ने।
9 पॉइंट्स मतलब करीब 4.25 लीटर खून जो एक आम वयस्क के शरीर में होता है। पर जैसा आपने कहा, ये किताब सिर्फ बायोलॉजी की नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये खून के जरिए हमारे समाज, हमारी संस्कृति, यहाँ तक कि व्यापार और राजनीति की परतों को खोलती है ना?
सही कहा। खून सिर्फ वो लाल रंग का तरल नहीं है जो नसों में दौड़ता है। ये हमारी सेहत से, बराबरी के मुद्दों से, अरबों डॉलर के ग्लोबल बिजनेस से, और हाँ, सदियों पुरानी वर्जनाओं मतलब टैबूज से भी जुड़ा है।
और किताब यही पूछती है, ये खून आखिर हमारे बारे में बताता क्या है?
और ये सवाल आज बहुत अहम है, खासकर जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सेफ ब्लड यानी सुरक्षित खून सबको बराबर नहीं मिलता। कहीं आसानी से है, कहीं जान का सवाल बन जाता है।
तो चलिए इसी जरूरी विषय की गहराई में उतरते हैं आज।
बिल्कुल। पहले लेखिका के बारे में थोड़ी बात कर लें, रोज जॉर्ज।
हाँ, जरूरी है। वो ब्रिटेन की जानी मानी पत्रकार और लेखिका हैं, और उनकी खासियत है ऐसे विषयों पर लिखना जिन पर लोग आमतौर पर बात नहीं करते या करना नहीं चाहते।
हाँ, जैसे अनदेखे या कहें टाबू वाले मुद्दे। इस किताब से पहले उन्होंने मानव अपशिष्ट पर मतलब हमारे टॉयलेट और सीवेज सिस्टम पर एक किताब लिखी थी, द बिग नेसेसिटी।
अच्छा, और एक किताब विशाल समुद्री जहाजों और ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री पर भी।
मतलब वो ऐसी छुपी हुई दुनियाओं को सामने लाती हैं जो हमारी जिंदगी चलाती हैं पर हम ध्यान नहीं देते।
और उनका नज़रिया इसलिए भी अलग है क्योंकि वो डॉक्टर या खून के एक्सपर्ट मतलब हेमेटोलॉजिस्ट नहीं हैं, वो एक पत्रकार हैं, जिज्ञासु, संवेदनशील। सही, उनकी ताकत ज़मीनी रिपोर्टिंग में है। वो लोगों की कहानियों को बड़े ग्लोबल इश्यूज से जोड़ देती हैं बहुत आसानी से।
और मुश्किल वैज्ञानिक या सामाजिक बातें भी वो इतनी सरल भाषा में समझाती हैं कि आम पाठक भी समझ जाए बिना किसी भारी भरकम डॉक्टरी जुबान के। वो ऐसे सवाल उठाती हैं जो शायद एक्सपर्ट न पूछें पर हमारे आपके मन में आते हैं।
बिल्कुल। अच्छा, तो अब आते हैं किताब पर, 9 पॉइंट्स। जैसा नाम से ही लगता है, ये खून के अलग अलग रंगों, अलग अलग पहलुओं की एक लंबी यात्रा है।
हाँ, ये सिर्फ हमारी नसों में बहने वाले खून की बात नहीं करती, ये उस खून की कहानी भी है जो दान किया जाता है, जो बेचा जाता है, जिससे लोग डरते हैं, जिसका सम्मान करते हैं।
तो किताब का सेंट्रल आइडिया क्या है, मुख्य बात क्या कहना चाहती हैं लेखिका?
किताब का मूल तर्क ये है कि खून एक तरह का आईना है जिसमें हम अपने समाज को देख सकते हैं। हम खून कैसे जमा करते हैं, कैसे उसे प्रोसेस करते हैं, कैसे बांटते हैं,
किस चीज़ से डरते हैं, किसका आदर करते हैं।
हाँ, ये सब हमारी मेडिकल व्यवस्था, हमारी इकोनॉमी, हमारे सामाजिक न्याय के पैमाने और हमारी संस्कृति की सफलता और विफलता दोनों दिखाता है।
मतलब ये जीवन देने वाला तरल पदार्थ, ये खून, असल में हमारी कहानी कहता है।
बिल्कुल। और ये बड़ी समस्याओं पर रोशनी डालती है, जैसे दुनिया में सुरक्षित खून मिलने में इतना फर्क क्यों है, पीरियड्स को लेकर इतने टैबू क्यों हैं,
और वो प्लाज्मा वाला मुद्दा भी है ना, खून का एक हिस्सा जिसके व्यापार पे बड़े नैतिक सवाल हैं।
हाँ, अरबों डॉलर का व्यापार है वो, और फिर वो 1970-80 के दशक का दूषित खून कांड, उसकी भी पड़ताल है इसमें, बहुत दर्दनाक कहानी है वो।
तो किताब हमें एक सफर पे ले जाती है, इंग्लैंड के हाईटेक ब्लड सेंटर से लेकर
नेपाल के उन गांव तक जहाँ पीरियड्स के दौरान औरतों को अलग थलग कर दिया जाता है, अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर के प्लाज्मा सेंटर से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक जो HIV से जूझ रहा है।
और ये सिर्फ बाहरी दुनिया का सफर नहीं है, लेखिका अपने निजी अनुभव भी बताती हैं।
हाँ, वो अपने PMDD प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के बारे में लिखती हैं। ये पीरियड से जुड़ी एक गंभीर हालत है, तो कहानी बहुत पर्सनल लेवल से शुरू होके ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री के अरबों डॉलर के खेल तक पहुंचती है।
चलिए अब कुछ खास हिस्सों पे थोड़ी और बात करते हैं। पहला अध्याय बहुत पर्सनल है, जैसा आपने कहा, PMDD का अनुभव।
हाँ, और ये तुरंत खून को सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज से हटाकर एक बहुत निजी और कभी कभी तकलीफ दे अनुभव बना देता है।
और यहीं से वो पीरियड से जुड़े बड़े मुद्दे पर आती हैं कि ये सिर्फ शर्म या चुप्पी का मामला नहीं है।
बिल्कुल, ये औरतों की बराबरी, उनकी सेहत, उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़ी रुकावट है। जॉर्ज भारत और नेपाल से रिपोर्टिंग करती हैं, MHM यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की चुनौतियों के बारे में बताती हैं।
भारत के पैडमैन अरुणाचलम मुरुगुनाथन का जिक्र भी है, जिन्होंने सस्ती सैनिटरी पैड मशीन बनाई। कमाल की कहानी है वो।
लड़कियों औरतों को घर से बाहर गंदी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, कई बार जाने भी चली जाती हैं।
तो ये अध्याय साफ दिखाता है कि खून, खासकर पीरियड्स के खून को लेकर हमारा नजरिया कैसे सीधे सीधे इंसान की गरिमा को प्रभावित करता है।
ये सिर्फ साफ सफाई का नहीं, मानव अधिकार का सवाल है।
एकदम सही। इसके बाद के अध्याय एक बड़े नैतिक सवाल पर है। खून क्या? ये एक तोहफा हो या एक चीज जिसका व्यापार हो?
दूसरा अध्याय द गिफ्ट यानी तोहफे की बात करता है। यहाँ रिचर्ड टिटमस की किताब द गिफ्ट रिलेशनशिप का जिक्र है।
हाँ, टिटमस का तर्क था कि बिना पैसे के अपनी मर्जी से खून देना, मतलब वॉलंटरी डोनेशन, न सिर्फ नैतिक रूप से बेहतर है बल्कि इससे खून ज्यादा सुरक्षित भी रहता है।
जॉर्ज ब्रिटन की NHS ब्लड सर्विस का उदाहरण देती हैं, जहां खून को एक अनमोल तोहफा माना जाता है।
लेकिन फिर आता है तीसरा अध्याय द ट्रेड यानी व्यापार, और ये तस्वीर बिल्कुल उलट देता है।
यहाँ बात होती है प्लाज्मा की, खून का वो पीला तरल हिस्सा। ये प्लाज्मा आज एक multi-billion-dollar ग्लोबल इंडस्ट्री है,
और इसमें अमेरिका का दबदबा है, जहाँ प्लाज्मा देने वालों को पैसे मिलते हैं।
जॉर्ज ये भी देखती हैं कि ये प्लाज्मा बेच कौन रहा है।
अक्सर ये समाज के सबसे गरीब, सबसे कमजोर लोग होते हैं, जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है।
वो इस पूरी सप्लाई चेन को ट्रैक करती हैं, अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर के प्लाज्मा सेंटरों से लेकर यूरोप की बड़ी फार्मा कंपनियों तक, जो इस प्लाज्मा से जीवन बचाने वाली दवाएं बनाती हैं।
ये एक मुश्किल सवाल खड़ा करता है ना, क्या इंसान के शरीर के हिस्सों को ऐसे खरीदना बेचना ठीक है? क्या ये गरीबी का फायदा उठाना नहीं?
हाँ, दवाएं जरूरी हैं, पर वो आ कहाँ से लेंगे ये सोचना भी जरूरी है।
और इसी व्यापार से जुड़ा है किताब का शायद सबसे हिला देने वाला हिस्सा, चौथा अध्याय द कंटामिनेशन यानी संदूषण, वो 1970 और 80 का दूषित रक्त कांड।
वो से भी प्लाज्मा लिया, जैसे कैदी, नशे के आदि।
उस समय HIV और हेपेटाइटिस सी जैसे वायरस फैल रहे थे और टेस्टिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी।
नतीजा, ये खतरनाक वायरस खून और प्लाज्मा सप्लाई में घुस गए, और क्योंकि ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकते थे, ये एक ग्लोबल हेल्थ त्रासदी बन गई। हजारों लोग, खासकर हीमोफीलिया के मरीज, इन जानलेवा बीमारियों के शिकार हो गए।
किताब ब्रिटेन में हुई त्रासदी पर खास ध्यान देती है। हजारों लोग संक्रमित हुए। ये अध्याय सरकारी लापरवाही, कंपनियों के लालच, इन सबकी पोल खोलता है, मुनाफे वाले सिस्टम की मानवीय कीमत दिखाता है।
बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि खून कितना कीमती है और उसके सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है।
फिर पांचवां और आठवां अध्याय हमें दक्षिण अफ्रीका ले जाता है और एक्टिविज्म, मतलब लोगों के संघर्ष की ताकत दिखाता है।
हाँ, दक्षिण अफ्रीका एक खास केस स्टडी है, दुनिया में सबसे ज्यादा HIV रेट वाले देशों में से एक। वहाँ सुरक्षित खून सप्लाई बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है।
जॉर्ज वहाँ की नेशनल ब्लड सर्विस SNBS के इतिहास को बताती हैं, कैसे रंग भेद के जमाने में नस्ल के आधार पर खून अलग किया जाता था, और कैसे आज वो देश HIV के साथ जी रहा है और सुरक्षित खून देने की कोशिश कर रहा है।
और हम जेनेट जैसे ब्लड एक्टिविस्ट से मिलते हैं, जो गांव-गांव जाकर लोगों को खून की सुरक्षा और रक्तदान के बारे में समझाते हैं।
तो ये दिखाता है कि किसी देश का ब्लड बैंक सिर्फ मेडिकल चीज नहीं होता, वो उस देश के इतिहास, उसके सामाजिक संघर्षों, उसके हेल्थ संकटों का आईना होता है।
और ये एक्टिविज्म के महत्व को भी रेखांकित करता है, चाहे पीरियड्स का मुद्दा हो, खून की सुरक्षा हो, या दूषित खून पीड़ितों के लिए इंसाफ की लड़ाई हो। बदलाव आम लोगों, कार्यकर्ताओं के प्रयासों से ही आता है।
अच्छा, किताब में कुछ हैरान करने वाली चीजें भी हैं, जैसे वो जोंक वाला अध्याय, लीच।
हाँ, है ना अजीब, हिरुडोथेरेपी यानी जोंक से इलाज, लगता है पुरानी बात है, पर आज मॉडर्न सर्जरी में ये वापस आ रही है।
सच में? कैसे?
माइक्रो सर्जरी में, जैसे कटी हुई उंगली वापस जोड़नी हो। जोंक की लार में ऐसे केमिकल होते हैं जो खून को पतला रखते हैं, थक्का नहीं बनने देते, तो जुड़े हुए हिस्से में खून का बहाव बना रहता है।
कमाल है, ये दिखाता है कि मेडिकल साइंस कैसे पुरानी चीजों को भी नए तरीके से यूज कर सकता है।
बिल्कुल। और फिर सातवां अध्याय खून के भविष्य की तरफ देखता है, कृत्रिम खून बनाने की कोशिशें जो दशकों से चल रही हैं।
हाँ, ये इतना मुश्किल क्यों है, और अगर बन गया तो क्या फायदे होंगे?
किताब इस पर भी बात करती है, और पैराबायोसिस पर भी, मतलब बूढ़े शरीर में जवान खून चढ़ाने वाले प्रयोग, जिसमें कुछ असली विज्ञान है तो कुछ बहुत शक वाले दावे भी हैं।
तो इस पूरी खोजबीन से कुछ बड़े थीम या संदेश क्या निकलते हैं?
पहला और शायद सबसे अहम, खून सिर्फ बायोलॉजिकल चीज नहीं है, ये एक सामाजिक और राजनीतिक चीज है। ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन सकता है, जैसे दूषित खून पीड़ितों के संघर्ष में।
ये आर्थिक सिस्टम का हिस्सा है, जैसे प्लाज्मा इंडस्ट्री में।
और ये सामाजिक कंट्रोल का जरिया भी है, जैसे पीरियड से जुड़े टैबू में।
दूसरा बड़ा संदेश है टैबू की ताकत, खासकर पीरियड्स को लेकर। जैसा किताब दिखाती है, ये सिर्फ शर्म की बात नहीं, ये औरतों की पढ़ाई, नौकरी, उनकी इज्जत में सीधी रुकावट है।
इस चुप्पी को तोड़ना सामाजिक न्याय का काम है। भारत में भी पैडमैन जैसी कोशिशें हुई हैं, पर चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं।
तीसरा थीम है वो दान बनाम व्यापार वाला नैतिक संघर्ष, है ना?
बिल्कुल। क्या खून तोहफा हो, जैसा ब्रिटेन मानता है, या व्यापार की चीज, जैसा अमेरिकी प्लाज्मा उद्योग में है। मुनाफे से नई दवाएं आती हैं, पर शोषण और खतरा भी बढ़ता है। कोई आसान जवाब नहीं है इसका।
चौथा, खून दुनिया में फैली असमानता को दिखाता है, अमीर और गरीब देशों के बीच ब्लड गैप।
हाँ, अमीर देशों में सुरक्षित खून मिलना आम बात है, गरीब देशों में ये जान बचाने का सवाल है। भारत में भी शहर, गांव, सरकारी प्राइवेट अस्पताल, खून की उपलब्धता और सुरक्षा में बहुत फर्क हो सकता है।
और पांचवा संदेश है मेडिकल तरक्की की दोधारी तलवार।
सही, हर कामयाबी के साथ कोई खतरा या चेतावनी जुड़ी हो सकती है। प्लाज्मा दवाओं ने जाने बचाई, पर वायरस भी फैलाए। कृत्रिम खून बनाना जरूरी लगता है, पर अब तक फेल रहा है। तरक्की सीधी रेखा में नहीं होती।
किताब में कई ऐसी लाइनें हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं। कुछ यादगार विचारों पे बात करें?
जरूर। एक विचार जो मुझे बहुत दमदार लगा, उसका सार ये है, मासिक धर्म का खून ही एकमात्र ऐसा खून है जो हिंसा से नहीं बहता, फिर भी यही हमें सबसे ज्यादा घिनौना लगता है।
ये हमारी सोच का विरोधाभास दिखाता है ना?
हाँ, हिंसा वाला खून हम देख लेते हैं, पर जीवन देने वाला खून छिपाते हैं। तय एक पॉइंट खून में सिर्फ जीवन का तोहफा नहीं है, बल्कि समाज का खुद पर और अजनबियों पर भरोसे की कहानी भी है।
ये बहुत खूबसूरत बात है। ये दिखाता है कि लोग एक दूसरे की मदद को तैयार हैं बिना किसी उम्मीद के। ये आपसी जुड़ाव का प्रतीक है।
तीसरा विचार, प्लाज्मा उद्योग के नैतिक पेंच पर। जीवन बचाने वाली दवा और बाजार में बिकने वाली चीज के बीच की महीन रेखा प्लाज्मा में खींची जाती है।
ये फिर वही सवाल उठाता है, जब गरीब लोग जरूरत में प्लाज्मा बेचते हैं और उससे अमीरों के लिए महंगी दवाएं बनती हैं, तो ये कितना नैतिक है।
और चौथा विचार, जिसका सार है, किसी देश की खून सप्लाई उसका तरल इतिहास होती है, जो उसके युद्धों, उसके पलायन, उसकी बीमारियों और उसके पूर्वग्रहों की कहानी कहती है।
ये दक्षिण अफ्रीका वाले हिस्से में साफ दिखा, रंग भेद से लेकर HIV तक खून की कहानी देश की कहानी बन जाती है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम क्या कर सकते हैं?
सबसे पहली बात तो सीधी है, अगर हम स्वस्थ हैं, योग्य हैं, तो रक्तदान पर जरूर सोचें। किताब इसे एक नागरिक जिम्मेदारी की तरह दिखाती है।
हाँ, ये सचमुच किसी की जान बचा सकता है। दूसरा, पीरियड से जुड़े कलंक को खत्म करने में मदद करें, खुलकर बात करें, सही जानकारी दें, स्कूलों, पब्लिक जगहों पर मुफ्त पैड की वकालत करें।
भारत में कई संस्थाएं इस पर अच्छा काम कर रही हैं, उनका साथ दें, ये चुप्पी तोड़ना बहुत जरूरी है।
तीसरा, हम हेल्थ सर्विसेज के जागरूक ग्राहक बन सकते हैं। दवाएं कहाँ से आ रही हैं, उनकी सप्लाई चेन नैतिक है या नहीं, ये सवाल पूछना हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाता है।
चौथा, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज के बारे में जानें, समझें कि दुनिया के कई हिस्सों में सुरक्षित खून मिलना क्यों मुश्किल है। WHO और देशों की ब्लड सर्विसेज के काम को जानें।
और पांचवा, पब्लिक हेल्थ सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करें। दूषित खून कांड जैसी त्रासदियों से सबक लेना जरूरी है। हेल्थ सिस्टम नाजुक हो सकते हैं, उन्हें लगातार निगरानी और सुधार की जरूरत है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि जो चीज सामान्य लगती है, जैसे खून, वो असल में कितनी असाधारण और जटिल है, और जो चीजें अक्सर छिपी रहती हैं, वो कितनी जरूरी हैं। खून वाकई हमारी सबकी मिलीजुली कहानी है।
और मेरे लिए एक अहम बात ये है कि खून जैसे जरूरी संसाधन को हम कैसे संभालते हैं, ये हमारे समाज की असली सोच दिखाता है। क्या हम इसे पवित्र तोहफा मानते हैं या बस व्यापार की चीज? ये चुनाव हमारी प्राथमिकताएं तय करता है। इन सिस्टम्स की नाजुकता को समझना जरूरी है।
रोज जॉर्ज ने वाकई एक मुश्किल विषय को बहुत मानवीय, दिलचस्प और जरूरी चर्चा में बदल दिया है। ये किताब हमें खून के बारे में और अंत में अपने बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।